नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राजा रमन जी, आपका स्वागत है।
नमस्कार जया।
हर दिन की तरह ढेर सारी खेल खबरें हैं हमारे पास, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी खबर होगी आज की, वो होगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला ठीक वर्ल्ड कप से पहले।
बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर नहीं है, या ये सीरीज और वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज है, तो एक आइडिया मिलेगा भारतीय खिलाड़ियों का जो फॉर्म है, जो लय है, उसको लेके एक आइडिया मिलेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है आज।
बिल्कुल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। आरसीबी प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। विश्व कप से ठीक पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला कल से शुरू होगी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का 6वां संस्करण लद्दाख के लेह में शुरू, और इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन अनमोल खरब और आकर्षी कश्यप अपने अपने मुकाबले जीतकर महिला सिंगल्स मेन ड्रॉ में पहुंची। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का 13वां मुकाबला आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा के कोटांबे स्टेडियम में खेला जा रहा है। और अगर हम ताजा समाचार की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने अब तक 14वें ओवर में 3 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दोनों टीमें देखिए तो अभी अपने फॉर्म में वापसी की कोशिश में है,
खास करके दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक बहुत ही कमजोर रहा अभी तक का प्रदर्शन उनका, 4 मैच में 1 ही जीते हैं, और अगर ये आज जीत जाते हैं तो टेबल में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आ सकता है। बहुत सारे टीम, 4 टीम के पास 4-4 पॉइंट होंगे, हालांकि आरसीबी सबसे आगे निकल चुकी है, 10 पॉइंट कमा चुकी है ऑलरेडी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास एक मौका है। पिछले शायद 10-15 मिनट में 2 विकेट चटकाए उन्होंने मुंबई इंडियंस के, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच होगा। ये करो या मरो वाली स्थिति में आई गई दिल्ली की टीम।
बिल्कुल, अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट झटक लिए हैं। दिल्ली ने मिन्नू मनी की जगह 16 वर्ष की दिया यादव को टीम में शामिल किया है, जबकि मुंबई इंडियंस में 4 बदलाव देखने को मिले हैं, तो इन बदलावों से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है?
नहीं, टीम्स अभी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कोई खिलाड़ी जब फॉर्म नहीं दिखा रहा है, और क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लंबा टूर्नामेंट है नहीं, ये मेंस टूर्नामेंट जैसे 6 हफ्ते वाला है नहीं, टीम्स के पास बहुत कम समय है अपने आप को ठीक करने का, अपना रास्ता सुधारने का, और ये शायद कोशिश कर रहे हैं, कुछ युवा खिलाड़ी को मौका दे के वो कोशिश ही कर रहे हैं कि कुछ नया कर दिखाएं। अगर एक नया जोश आ गया टीम में तो फिर दिल्ली की टीम में 4 चांद लग सकती है, लेकिन मुंबई की टीम भी कोई कम नहीं, वो भी तो कोशिश ही कर रहे हैं कि वो जीते ये मैच। बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा, अभी बहुत बहुत गेम बचा है, इसमें कुछ भी हो सकता है यहाँ से।
बिल्कुल, और अगर कल के मुकाबले को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल गुजरात जायंट्स को 61 रन से हराया था।
गौतमी नायक के 73 रन की शानदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को निर्धारित 20 ओवर में 179 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद खराब रही, पावर प्ले तक टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे और महज 29 रन ही जोड़ सकी थी। आरसीबी की शानदार गेंदबाजी के आगे गुजरात निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 117 रन ही बना सकी। 47 सतघरे ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट झटके, वहीं नदीन डी क्लर्क ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 5 में से 5 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। अंक तालिका में मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स 5 में से 2 मुकाबले जीतकर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 1 जीत के साथ अंतिम पायदान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन।
लगातार पांचवें जीत के बाद आरसीबी प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बन चुकी है, और जैसा हम बात कर रहे थे कि वो काफी अच्छा चल रही है पूरे टूर्नामेंट में, अगर हम देखें पूरी प्रतियोगिता में, अब उसका लक्ष्य आगे अन्य तीन मुकाबलों को जीतकर फाइनल में जगह बनाने की होगी।
वो तो होगी, लेकिन फॉर्म को बरकरार रखना होगा। शुरुआती दौर पर कुछ टीमें अच्छी कर जाती हैं, शुरुआत बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो कमजोरियां नजर आती है। आरसीबी नहीं चाहेगी कि ये टूर्नामेंट की पकड़ जो बना रखी है उसको थोड़ा सा कमजोर कर दे। बहुत स्ट्रांग टीम है, और शायद अन्य टीमों को आरसीबी को हराने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन जाता है, चुनौती है उनके सामने।
बिल्कुल, तो देखना रोमांचक होगा कि आरसीबी अपने मोमेंटम को बरकरार रख पाती है या नहीं, और दिल्ली कैपिटल्स आज मुंबई इंडियंस को मात दे पाती है या नहीं, क्योंकि दोनों के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से शुरू हो रहे पांच मैचों की T20 श्रृंखला की। भारत की नजर वनडे सीरीज में मिली हार का बदला चुकता करके अगले महीने घरेलू धरती पर होने वाले T20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता अंजाम देने पर होगी।
न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की T20 श्रृंखला आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की अपनी आखिरी तैयारी होगी, और सभी की निगाहें कप्तान सूर्य कुमार यादव पर होंगी। विश्व कप में 3 हफ्ते से भी कम समय बचा है, इसलिए ये श्रृंखला मौजूदा चैंपियंस के लिए एक अहम ड्रेस रिहर्सल और कप्तान के लिए एक पर्सनल टेस्ट है, जिनका लीडरशिप रिकॉर्ड तो शानदार रहा है, लेकिन बैटिंग फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले 2 सालों में भारत की T20 टीम काफी हद तक संतुलित रही है, जिसमें खिलाड़ियों की भूमिकाएं स्पष्ट थीं और IPL के तगड़े परफॉर्मर्स थे। न्यूजीलैंड की टीम पिछले 1 वर्ष में भारत में कई ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है, जबकि T20 में भारत पसंदीदा टीम है। सूर्य कुमार की फॉर्म इस सीरीज में निर्णायक साबित हो सकती है, जिसे विश्व कप से पहले खेल के हर विभाग में खिलाड़ियों की तैयारियों को धार देने के लिए डिजाइन किया गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे कप्तान हैं, वो अपने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरी टीम को देखने को मिल रहा है, तो क्या इस बार उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है?
वो हमेशा ही रहती है, वो उन्हें शायद 360 डिग्री प्लेयर का खिताब भी मिल चुका है। एबीडी विलियर्स के बाद लोग मान रहे थे कि ये बहुत ही शानदार T20 के बल्लेबाज हैं, कप्तानी भी अच्छी हो रही है, हो सकता है कि लय वापस आए, कुछ फ्रेश होकर आए, कई दिन से बड़ा क्रिकेट नहीं खेले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले नहीं है, वनडे टीम से बाहर थे, तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव पे जो नज़रें होंगी, जो दबाव है उन पे, उसको वो अच्छे तरीके से झेलेंगे और फिर कुछ रन बना के दिखाएंगे। सही टाइम है उनको लाइव में वापस आने का, क्योंकि विश्व कप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
न्यूजीलैंड की टीम को हमने पिछले 1 वर्ष में देखा है कि किस तरह से भारत में कई ऐतिहासिक जीत उसने हासिल किया है, अगर हम वनडे देखे, टेस्ट देखे, तो इस तरह से जो कॉन्फिडेंस है अब न्यूजीलैंड के पास, उसके सामने भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी?
जया, वनडे सीरीज हारना भारत के लिए अच्छी बात नहीं थी, पहली बार हारी है भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज अपने घर पर, लेकिन उसका असर शायद T20 मैचेस पे नहीं पड़ेगा, कुछ खिलाड़ी चेंज बदलाव हुआ है, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी नहीं है टीम में, जो शानदार फॉर्म में थे हालांकि वनडे सीरीज में, लोगों को लगेगा कि उनको शायद वापसी करना होगा T20 टीम में, लेकिन भारतीय T20 टीम काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि इनकी चुनौती के सामने न्यूजीलैंड डगमगा जाएगी, बट यू हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट। लेकिन हम सबको ये एक चीज़ याद रखनी होगी जया, कि ये तैयारी है, असली टूर्नामेंट तो अगले महीने है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों को मौका दे सकते हैं, बैटिंग ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन असल टूर्नामेंट तो अगले महीने है।
बिल्कुल, लेकिन अगर हम पिछले कुछ मुकाबले देखें या फिर कुछ सालों में क्रिकेट का जो प्रदर्शन देखें, तो क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक सवाल अब लगातार खटक रहा है कि एक समय था जब क्रिकेट का ग्राफ इंडिया में काफी ऊपर तक बढ़ा था, तो क्या वो समय आ गया कि वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है?
नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद नहीं आ रहा है, हमको लगेगा कि न्यूजीलैंड जो शायद सेकंड टीम थी, न्यूजीलैंड की पहली टीम तो आई नहीं, कई वजह थी कि उनके कुछ अच्छे प्लेयर्स आए नहीं थे, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि थर्ड टीम है उनका, दूसरा टीम भी नहीं, तीसरा टीम है, लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं चाहिए। हालांकि पिछले साल टेस्ट सीरीज हार गई थी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसका दर्द होता है, लेकिन वन डे सीरीज हारना शायद उतना सोचना नहीं चाहिए हम लोगों को, आगे बढ़ना चाहिए। अभी ये जो पांच मैच का श्रृंखला है इसमें भारतीय टीम अगर अच्छा क्रिकेट खेल के अपनी तैयारी सही तरीके से करे तो फैंस को एक बार फिर कॉन्फिडेंस वापस आ ही जाएगा।
बिल्कुल, तो इसी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से हम आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस बार सूर्य कुमार यादव के बल्ले से ऐसी गेंद बल्लेबाजी निकले और हमारी टीम वापस से जीत के लय को बरकरार रखे। तो श्रोताओं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मैच कल नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब बात खेलो इंडिया की, जहां शीतकालीन खेलों का 6ठा संस्करण लद्दाख के लेह में शुरू हो गया है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी हॉकी और स्केटिंग जैसे बर्फीले खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पहले दिन का हाल जानते हैं हमारे लेह संवाददाता से।
द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 20th-26th ऑफ दिस मंथ एट 3 लोकेशंस इन लेह सिटी ऑफ लद्दाख, एनडीए स्टेडियम, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर एंड गोपकुल पॉन्ड। ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन वुमेन कैटेगरी ऑफ आइस हॉकी, ITBP स्कोर 6-0 विक्ट्री ओवर राजस्थान, वाइल एज यूटी लद्दाख टीम बीट तेलंगाना बाई 19-1। पदमा देसल ऑफ यूटी लद्दाख वुमेन टीम शाइनस विद 5 गोल्स, सेंडिंग स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर द मैच अहेड। Another ice hockey competition, Himachal women team dominated over Haryana team by 2-0. In men's category of ice hockey, Army takes on Himachal in a high-octane showdown at NDS ice hockey rink. Army won by 5-1. This is Khurshid Yusuf from Leh Ladakh.
खेलो इंडिया के बैनर तले जिस तरह से सरकार लगातार नए खिलाड़ियों को, युवा खिलाड़ियों को नए मंच प्रदान कर रही है, वे उनके मनोबल को कितना बढ़ाते हैं?
बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कंपटीशन कराते हैं, खिलाड़ियों को दूसरा टूर्नामेंट मिलता ही नहीं है, तो खेलो इंडिया एक वो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट हो गया हर साल। खिलाड़ियों आई थिंक दे लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि विंटर गेम्स की भी तैयारी हो सकती है और फिर टॉप्स में विंटर गेम्स के कुछ खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं या फिर टारगेट एशियन गेम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। और भारत सरकार जो विंटर गेम्स के लिए खास करके कर रही है, हालांकि खेलो इंडिया के कई सारे डिफरेंट एडिशंस है, बीच गेम्स हुए हैं, ट्राइबल गेम्स होंगे, विमेंस का अलग से लीग होने लगा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल, और बता दें कि इस संस्करण से ओलंपिक खेल फिगर स्केटिंग को भी शामिल किया गया है। स्पीड स्केटिंग और शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग पहले से ही मौजूद है। आइस हॉकी प्रतियोगिताएं फ्यांग स्थित एनडीएस आइस हॉकी स्टेडियम और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के आइस हॉकी रिंक में आयोजित की जा रही हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पहले दिन अनमोल खरब और आकर्षि कश्यप अपने अपने मुकाबले जीतकर महिला सिंगल्स मेन ड्रॉ में पहुंच गई है। अनमोल ने कनाडा की वेन यू झांग को रोमांचक मैच में 21-18, 20-22, 21-19 से हराया, जबकि आकर्षि ने अपने ही देश की इशारानी बरुआ को 21-13, 21-17 से हराया। दोनों कल महिला सिंगल्स मेन ड्रॉ के पहले राउंड में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा के साथ शामिल होंगी। तो ये नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं अभी, इसके हालांकि क्वालिफाइंग मुकाबले थे जो उन्होंने महिला सिंगल्स में मेन ड्रॉ में जगह बना ली, और अब ये जो हमारी लीड खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलेंगी।
बहुत जरूरी है का एक नई पीढ़ी का उभरना, फिर वहां चल के मेन ड्रॉ में खेलना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। हो सकता है कि इनमें से कई खिलाड़ी एशियन गेम्स भी खेल जाए इस साल।
पुरुष हॉकी इंडिया लीग में हैदराबाद तूफान्स ने HIL GC को 3-2 से हराया और अन्य मुकाबला JSW सूरमा हॉकी क्लब और वेदांता कलिंगा लैंसर्स के बीच जारी है, जहां JSW सूरमा हॉकी क्लब 2-1 से आगे चल रही है। इसके अलावा भारतीय स्टार आर प्रज्ञानंदा ने पुष्टि की है कि वह तीसरी बार नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और श्रोताओं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रही कि हम और चर्चा करें, तो इसी के साथ अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। नमस्कार।